शांति। हम सबके बीच में आदरणीय राजयोगी भ्राता छोटेलाल भाई जी पधारे हैं। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। यूं तो आपका लौकिक जन्म राजस्थान की धरनी में हुआ है, लेकिन आपका अलौकिक जन्म फरीदाबाद हैदराबाद से हुआ है, हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा से हुआ है और आपको ज्ञान लिए पूरे 45 वर्ष हो चुके हैं और मधुबन में समर्पित हुए 40 वर्ष हो चुके हैं। वर्तमान में जो आपकी सेवाएं हैं वो है आंगन की सिक्योरिटी और रात्रि क्लास के लिए स्पीकर्स फिक्स करना, और इसके अलावा बाबा ने बहुत अच्छी आप में खूबियां भरी है ज्ञान योग की, जिसके बल पर आप देश विदेश में सेवार्थ भ्रमण करते हैं। भारत भर में तो प्रायः घूमते रहते हैं सेवार्थ, लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, दुबई आदि आदि स्थानों पर भी आप जाके भट्टी करा के आए हैं। और लौकिक घर में आपकी गीता पाठशाला चलती है और लौकिक घर के कई सदस्य ज्ञान में चलते हैं और कई सदस्य समर्पित रूप से बाबा के घर में सेवाएं देते हैं। आज हम भाई जी से सुनेंगे योग के प्रयोग कैसे करें। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति।
एक मिनट, ये वैसे भी 1 बजे कर देंगे।
जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है तो हम सभी देख रहे हैं कि संसार में हलचल बढ़ती जाती है, क्योंकि अनेक जन्मों के पाप कर्मों का हिसाब किताब अनेक आत्माओं को अंत में चुकतू करके वापस घर जाना है। तो ज्ञान योग तो सब करते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई किसी के भी सामने समस्या परिस्थिति आती है तो वहां कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है और प्रश्न उठता है क्या करें कैसे करें, सब कुछ होते भी क्यों कुछ काम नहीं आता, हलचल पैदा हो जाती है। तो जो हम रोजाना की मुरलियों में ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, बाबा से योग करते हैं, उनका हम कैसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर विजयी बन जाएं, कुछ भी देखते सुनते रुकना नहीं पड़े, प्रश्न नहीं उठे, हलचल पैदा नहीं हो, वो तभी संभव है जब कि हमने जीवन में जो भी ज्ञान योग सुनते हैं करते हैं उसका प्रैक्टिकल में प्रयोग कर चलेंगे। तो योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 7 बातों की आवश्यकता है। उन 7 बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाएं और फिर प्रयोग करेंगे तो सफलता निश्चित होगी। पहली बात, हमारा एक दिन का योग का चार्ट अमृत वेले से रात्रि तक कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए। 2 घंटा बैठ के, 2 घंटा कर्म करते हुए, तो आप कहीं समस्या परिस्थितियों के लेवल से फिर ऊपर उठ जाएंगे। बातें आएंगी, हिसाब किताब आएंगे, लेकिन आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगे। इस पर एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक सेवाधारी माता हमारी आंगन में सेवा है सिक्योरिटी के दिन के समय, जैसा कि बहन जी ने बताया अभी, तो एक सेवाधारी माता आई, भाई जी मेरी ये समस्या वो समस्या वो समस्या, 8-10 समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूं। अब उस दिन मैं कहीं बाहर जा रहा था बाबा की सेवा में 5 दिन के लिए, तो मैंने माता जी को कहा, माता जी मैं अभी बाहर जा रहा हूं 5 दिन के लिए बाबा की सेवा में, तो ऐसा करो तब तक आप 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो 5 दिन तक, और 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना। बोल ठीक है। मैं बाहर चला गया, माता जी योग करती रही, दो घंटा बैठ के दो घंटा कर्म करते, और पांच दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मिलने के लिए आई तो पूछा, बोलो माता जी क्या समस्या है। तो माता जी कहती है, भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्याएं कहां हैं, क्यों ज्यादा हैं? जहां हमारा बाबा से योग कम है अथवा नहीं है वहीं ज्यादा समस्याएं। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। दूसरी बात, चार घंटा कैसे हो योग, फिर हम आगे बताते हैं उसका। दूसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना जरूरी है। एक ही समय और एक ही स्थान पर बैठकर रोजाना योग करें, जितने भी दिन करना हो। तीसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए जैसी समस्या जैसी परिस्थिति वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। कहीं दुख दर्द की समस्या है तो मैं मास्टर दुखड़ता सुख करता हूं, कहीं शांति की आवश्यकता है तो मैं पीस हाउस आत्मा हूं, कहीं शक्ति की जरूरत है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसी परिस्थिति जैसी समस्या वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। चौथी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए हमारे मन की निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावनाओं का होना जरूरी है। शुभ भावना, शुभकामना, कल्याणकारी भावनाओं का होना जरूरी है योग के प्रयोगों में सफलता के लिए। पांचवी बात, समर्पित बुद्धि होकर चलना, बाबा पर समर्पित बुद्धि होकर चलना है, वो बहुत जरूरी है। अभी का लेटेस्ट का अनुभव बताऊं, मैं 2 तारीख को ही वापस आया हूं, बड़ौदा सूरत बलसाड़ गए थे सेवा में। तो बलसाड़ बड़े सेंटर से एक दूसरे सेंटर पर क्लास कराने के लिए जाना था, 1.5 घंटे का रास्ता था। तो बहन जी ने रात को ही बोला, भाई रात को तो कोई गाड़ी वाला है नहीं, इसलिए सुबह ही गाड़ी आएगी, तो सुबह 5 बजे आप रेडी रहना, 5 बजे निकलना है यहाँ से, 1.5 घंटे का रास्ता है। अब मैंने कहा सुबह 5 बजे रेडी होना, माना योग का समय भी तैयारी में ही चला जाएगा। तो मैंने बहन जी को कुछ नहीं बोला, सुन ली बात उनकी, और मैं बाबा को याद करके कहने लगा, बाबा देखो योग का समय भी सुबह 5 बजे निकलना तो तैयारी में चला जाएगा, इसलिए मेरा संकल्प है कि रात को ही हम 8, 8:30 बजे यहां से चले जाएं और वहीं जाके ठहरे तो योग भी अच्छा कर सकेंगे, क्लास भी आराम से करा सकेंगे। अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, सेवा कराने वाले तो आप, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है। ऐसे मैंने अपनी मन की बात बाबा को याद कर और बता दिया, बाबा पर छोड़ दिया। उसके 1.25 घंटे बाद ही बहन जी का फिर से फोन आता है, अच्छा भाई जी वो गाड़ी का इंतजाम हो गया है, आप तैयार हो जाओ और 8:30 बजे यहां से निकलना है। बस तो कहीं भी कोई बात समस्या आए बस हम दिल से बाबा को याद कर बता दें, बाबा पर समर्पित हो जाए। वो कैसे क्या हो सकता है वो आज जानता है, वो सब कुछ कराने को तैयार है, लेकिन वो करेगा तभी जब हम पूरी तरह से उस पर मन बुद्धि से समर्पित हो जाएंगे। छठी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। मन बुद्धि की एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। देखो साइंटिस्ट भी कोई रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो वो देह और देह की दुनिया को बिल्कुल भूल के एकदम एकांत में चले जाते हैं और कोई नहीं हो बस, और उसी में मन और बुद्धि को, जिस लक्ष्य को उसने पाना है, जिस मना रास्ते पर उनको आगे बढ़ना है, जो रिसर्च करनी है, जिस पॉइंट पर विचार पर है, जिस बात पर, तो उसी में ही वो मन बुद्धि को एकाग्र कर देते हैं, तब जाके कहीं उनको सफलता मिलती है। सातवीं बात, हमारी पावरफुल स्थिति का होना बहुत जरूरी है, शक्तिशाली स्थिति और पावरफुल स्थिति। तो इन सातों बातों को सामने रखते हुए फिर आप योग का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अभी कैसे करें योग का प्रयोग, उसके लिए किन बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाएं, आधार बनाकर चले, उसके लिए सबसे पहली बात है कि हम तीन बातों का अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में करके चले। ज्ञान योग की बातें तो सुनी तो आपने बहुत हैं, क्लासेज में और भी सुनते रहेंगे, लेकिन मैं बतला रहा हूं कुछ प्रैक्टिकल के अभ्यास करने का। जो मैंने पहले बताया चार घंटा योग, क्या आप सात आठ घंटे योग का चार्ट भी बना सकते हैं? ये तीन अभ्यास यदि आप विधि पूर्वक करके चलते हैं तो। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। यहीं 200-250 लोग बैठे हैं, जब भी अपना लक्ष्य बना लो, जब भी जो भी जिसको देखे, ये भी आत्मा वो भी आत्मा वो भी आत्मा, अभी से ही कम से कम 50 लोगों को, ज्यादा आप जितनों को भी देख सकते। क्या होगा इससे कि हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बने, वैसे विचार बनेंगे, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूल आधार हुआ दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना लें, रूहानी बना लें, दिव्य बना लें, तो फिर संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद जब भी स्मृति आए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ, अनुभव करो कि यह देह और देह की दुनिया मेरे लिए जैसे खत्म हो गई है, केवल मैं आत्मा बचा हूं। कभी ऐसा अनुभव करो कि यह शरीर मेरा लाइट का बन गया है और लाइट के शरीर में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान। कभी ऐसा अनुभव करो कि यह देह मेरी खत्म हो गई है, मैं आत्मा निकलकर इस शरीर से और वापस जा रही हूं बाबा के पास वतन में। तो अशरीरी बनने का अभ्यास सहज और सरल हो जाए। और बाबा की ये भी शब्द है, बच्चे यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विदानर बनाएगा, और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा अशरीरी बनने की। इसलिए इस अभ्यास में हम अपने आप को परफेक्ट बनाएं, जब चाहें जहां चाहें संकल्प किया और सेकंड में शरीर बन जाए। और आज की मुरली में भी था है, यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा है, सेफ्टी का भी साधन बनेगा और मनसा सेवा का भी, और अंतिम पेपर में इसे अभ्यास के द्वारा आप पास हो सकेंगे। कौन हो सकेगा अंत में इस पेपर, अंतिम पेपर में पास? जिन्होंने बहुत काल का अशरीरी बनने का अभ्यास किया हुआ होगा। नहीं तो कई सोचते हैं ना अंत में सब हो जाएगा, थे अंत में कुछ नहीं हो पाएगा। जिसने जो सारा जीवन जो कुछ किया है अंत में वही काम आएगा। तो इस अभ्यास को हम जैसे कि नेचुरल बना ले, जब चाहे जहां चाहे संकल्प किया और सेकंड में ऐसे भी बन जाए। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात हर एक अपने सामने लाओ, आज नहीं तो कल सबको बनना तो ही फरिश्ता। हमारे इस ब्राह्मण जीवन की, संगमयुगी ब्राह्मण जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है फरिश्ता स्थिति। और जो हमें अंत में बनना है उस अपने उस फरिश्ते स्वरूप को बार बार अपने सामने लाए कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है। तो कैसा होता है, हर एक अपने सामने इमर्ज कर ले, सुनते सुनते हुए भी अपना वो फरिश्ता रूप। जैसे ये मेरा स्थूल शरीर है, इसी के अंदर एक लाइट का भी सर है, तो इमर्ज कर लो कि ये स्थूल शरीर धीरे धीरे मेरा जैसे कि मर्ज हो गया है और लाइट का शरीर इमर्ज हो गया है, और इस लाइट के शरीर में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान, और मुझे आत्मा से चारों ओर लाइट और माइट के पावरफुल शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। हर एक इमर्ज कर अपने सामने देखो अपना वो फरिश्ता रूप, फरिश्ता अर्थात जिसका इस देह और देह की दुनिया से कोई बुद्धि से कोई रिश्ता ना हो, फरिश्ता अर्थात विश्व कल्याणकारी आत्मा, फरिश्ता अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा, फरिश्ता अर्थात शुभ भावना शुभ कामना रख के चलने वाली आत्मा। तो ऐसा हरेक वो अपने सामने वो अपना फरिश्ता रूप इमर्ज करें और फील करें कि मैं ये हूं। जब स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में स्थित कर लेंगे तो ही आपको दूसरे फरिश्ते रूप में दिखाई देंगे। अगर हम खुद ही देह भान में हैं तो दूसरे की भी फिर देह ही नजर आएगी। इसलिए अपने उस फरिश्ते स्वरूप को सदैव कर्म करते चलते फिरते उठते बैठते इमर्ज कर रखें, अनुभव करें कि मैं फरिश्ता चल रहा हूं, मैं फरिश्ता फरिश्ते से बात कर रहा हूं, मैं फरिश्ता इन हाथों से कर्म कर रहा हूं, तो वो सहज और सरल हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों अभ्यास सारे दिन की दिनचर्या में आप विधि पूर्वक करके चलते हैं तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे। लेकिन होगा करने से, केवल सुन लेने से नहीं। सुन लेने से सबको अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल में हम कितना कर पाते हैं? अगर उसका रिजल्ट चाहते हैं, अनुभूति करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल जो भी कुछ, क्लासेज की बात नहीं, क्लासेज में भी और बाबा मुरलियों में भी जो कुछ हमें बातें प्रैक्टिकल करने को कहता है, यदि उसी समय से हम प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं तो बाबा वैसा बनने करने की शक्ति भी साथ साथ दे देता है। और जो आत्माएं उसी समय प्रैक्टिकल करती हैं उनको उस कार्य में सहज सफलता अनुभव होती है। तो यहीं से अभी शुरू कर दें हम। और योग के प्रयोग करने के लिए हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। कैसे भी समस्या परिस्थिति आए अपने मन में कभी कमजोर नेगेटिव विचारों को ना लाएं, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चले। क्योंकि बाबा ने कहा यह कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो ये बात भी हम हरेक अपने आप से पूछें कि क्या जो मैं बनना करना चाहते हूं या चाहता हूं क्या मैं वही सोचता हूं सोचते हूं, या नहीं तो कई बार जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते हैं, पता नहीं ऐसे नहीं हो जाए, ऐसा होगा तो क्या होगा। क्योंकि ये ध्यान रहे जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल की समीप पहुंच रहे हैं हमारे एक एक संकल्पों में सिद्ध होने की पावर आती जा रही है, वैसा बनने करने की शक्ति आती जा रही है। और कई बार आपने देखा होगा जो संकल्प किया तुरंत वो साकार हो जाता है। अब नेगेटिव संकल्प साकार हो गया तो वहां क्या होगा, एक समस्या खड़ी हो जाएगी, विघ्न पैदा हो जाएगा। और पॉजिटिव पावरफुल शक्तिशाली संकल्प साकार हुआ तो एक श्रेष्ठ स्थिति योग युक्त स्थिति बनाने का आधार बन जाएगा। तो इसलिए समस्याएं बातें आएंगी लेकिन हम वहां पर अपने संकल्प शक्ति को पॉजिटिव पावरफुल बना के चले। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे थे, उन्होंने अपनी क्लास में बात बताई, बात थोड़ी सूक्ष्म गहराई की है ध्यान से सुनने की, कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, अब हर एक अपने आप से पूछना कि कौन सा संकल्प सारे दिन में हमारे मन में अधिकांश बार बार आता रहता है। जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है इससे सिद्ध होता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अब हर एक पूछ ले अपने आप से, हमने लक्ष्य तो रख लिया निरंतर योगी फरिश्ता बनने का, और विचार चल रहे हो दुनियावी धंधे धोरी के इधर उधर के, कैसे उस मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। तो जो लक्ष्य रखा है वैसा ही विचार, वैसा ही चिंतन हमारे मन के अंदर चले तो उस मंजिल के समीप आप पहुंचते नजर आएंगे। और इसके साथ साथ इसलिए ध्यान देने की बात है कि हम कैसी भी समस्या परिस्थिति आए लेकिन अपने मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को ना लाएं, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। तो हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने पहचाने और उसको नेगेटिव होने से बचाएं। एक सुनिए प्रैक्टिकल का अनुभव, पहले मैं सुनाता हूं एक नेगेटिव विचार का अनुभव ताकि हम अपने आप को उससे बचा सके। एक भाई का फोन आया, कहने लगा भाई जी मैं 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूं और मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। क्या समस्या है जी? समस्या यह है कि हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है, क्या करें कहां जाएं बड़ी आयु। तो मैं भी सोचने लगा इसको क्या जवाब दें, तो जो बाबा से टचिंग मिली तो मैंने उनको पूछा भाई याद करो आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो एक मिनट में सोचता रहा, एक मिनट के बाद कहता है हाँ हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो, तो जो सोचा वही हो गया उनके साथ। ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसलिए ध्यान देने की बात है। कई बार माताएं बच्चों कह देते हैं तू जा घर से निकल जा है, तू नहीं होता तो अच्छा रहता है, या किसी को उसको बोल देते हैं उल्टा सीधा कोई वचन। अब वो उसकी बुद्धि में बाट बैठ गई तो घर से निकल जाएगा आज नहीं तो कल। इसलिए ध्यान देने की बात है, ऐसा हम कभी भी किसी को नेगेटिव विचार कभी किसी की बुद्धि में नहीं बिठाएं। तो और जब देखो एक नेगेटिव संकल्प के अंदर इतनी बड़ी पावर है, जो हम संकल्प करते हैं हो जाता है, तो पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर सकती है, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प का अनुभव। इसलिए मैं ज्ञान के हर पॉइंट के साथ साथ एक एक अनुभव सुना रहा हूं सुनाऊंगा ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। नहीं तो सोचते हैं ना ज्ञान तो सबके पास है लेकिन समस्या आने पर फिर भी प्रश्न उठता है क्या करें कैसे करें। लेकिन यदि आपने ज्ञान और योग का प्रयोग प्रैक्टिकल जीवन में किया है तो वहां कहीं भी आप की पुरुषार्थ की गाड़ी रुकेगी नहीं, निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। तो एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प का अनुभव कैसे हमारे मन और शरीर पर प्रभाव डालता है। तो एक भाई को कैंसर हो गया था और अंतिम स्टेज में पहुंच गया, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जिंदा रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया। डॉक्टर की बात सुनकर एकदम उन्होंने पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करने, मुझे कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है। तो एकदम डॉक्टर की बात के अपोजिट और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया। तो देखो ये नियम है कि जैसा हम संकल्प करते हैं वैसे हमारे शरीर में सेल्स का निर्माण होता जाता है और हर व्यक्ति के हर 4 महीने के अंदर बॉडी के पूरे सेल्स चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। यह प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है, डॉक्टर भी इस चीज को मानते हैं। और नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है? जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे सेल्स बनते जाते हैं, पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं। तो जब उस भाई ने यह संकल्प किया कि मुझे तो जिंदा रहना है, भगवान की सेवा करनी है, कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और जो शरीर में कैंसर के बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए, क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स खत्म होते चले गए। और आज इस बात को लगभग 16 साल होने को आए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, भगवान की अक्की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। ताली बजाई लेकिन आप सबने जोर से नहीं बजाई है। हाँ क्यों मैंने ये बात कही इसके पीछे एक राज है। मैं देख रहा हूं कोई कोई, वैसे सभी ठीक बैठे लेकिन कोई कोई थोड़ा वाणी से परे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब ताली बजती है तो अलर्टनेस आ जाए, चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती खत्म हो जाएगी, तो क्लास का पूर्ण आनंद ले सकेंगे। और दूसरा फायदा ताली का क्या होगा, जब ताली बजती है तो हमारे शरीर के सभी अंगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं, तो अनेक बीमारियों का इलाज स्वतः ही होता रहेगा। तो जहां आपको लगे कि जरूरत है तो जरूर बजाएं, ताकि सब में अलर्टनेस रहे और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तो अच्छा पुरुषार्थ और सेवा अच्छी कर सकेंगे। दूसरी बात, योग के प्रयोग करने के लिए हम अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई स्वमान का अभ्यास कर चलें। तीसरी बात है, सॉरी, पहली बात तो बताई तीन अभ्यास, दूसरी बात बताई संकल्प शक्ति को पॉजिटिव पावरफुल बना के चलें, तीसरी बात अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान इमर्ज कर लें, और ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही शक्ति की अनुभूति हो, अलर्टनेस आ जाए, चुस्ती आ जाए, सुस्ती खत्म हो जाए। क्योंकि हम अमृत वेले शारीरिक रूप से तो जग जाते हैं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा के रूप से अपने आप को जागृत करने की। और मन से आत्मा कब जागृत होगी, उसके अंदर जब एक नशा खुशी शक्ति आई तो जागृत होगी। तो मान लो कोई ऐसी आपको यहां बैठे बैठे ऐसी एक नशे और खुशी की बात सुना दे तो कितना मन प्रसन्न और खुशी में आ जाता है। तो ऐसे ही अमृत वेले आंख खुलते ही अपने श्रेष्ठ भाग को याद करो, मैं संसार की सबसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, मेरे जैसा भगवान संसार में कोई नहीं, जिनको आंख खुलते ही प्रभु मिलन होता हो। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लाइट हाउस माइट हाउस। अलग अलग कोई भी किसी का भी कोई समान हो सकता है जिससे आपको स्मृति आती, नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति हो, और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करेंगे तो मानसिक रूप से भी आप जागृत हो जाएंगे, पावर शक्ति की अनुभूति होगी, तो फिर आप एक अच्छा पावरफुल योग कर सकेंगे। तो जहां हम किसी भी स्वमान का स्वरूप बनकर चलते हैं तो स्वमान से क्या होता है, हमारे विचार महान बनते हैं, और जहां विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, शक्तिशाली बनाना सहज और सरल हो जाएगा। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है और दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची महान है वो स्वमान की सीट। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अपमान को भी खत्म किया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा आप कैसे भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। तो सुनिए एक ऐसा ही प्रैक्टिकल का अनुभव। एक और भाई का फोन आया, कहने लगा भाई जी मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। आजकल ये बहुत ऐसे होता रहता है, कईयों के फोन आते हैं, कोई किसी से पैसे ले लेते हैं देते नहीं है। वैसे तो बाबा ने मना किया है ज्ञानी आत्माओं को पैसे की लेन देन नहीं करनी है, फिर भी कोई करते हैं तो जब नहीं मिलता तो बस उसी के पीछे दिन रात संकल्प चलते हैं, स्थिति हलचल में आ जाती है, ज्ञान योग सब एक तरफ रह जाता है। तो उस भाई ने कहा भाई जी मैंने एक जमीन के प्लाट के लिए सौदा किया था 20 लाख रुपए में, बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, कहा फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। वो पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए, तो बोले ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते हैं। तो उसने 20 लाख रुपए दे दिए और पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया, कहा आपको ये प्लाट नहीं, ये प्लाट देंगे। एक जैसे ही बराबर के साथ साथ दो प्लाट थे, बात हुई थी एक नंबर की, वो देना चाहता है दो नंबर। बोले नहीं मुझे तो एक नंबर ही चाहिए। बोले एक नंबर नहीं मिलेगा। तो बोले ठीक है आपको नहीं देना तो मेरे पैसे वापिस कर दो, कल ले जाना। कल गया, 5 दिन बाद गया, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया, महीना बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे भी नहीं दे रहा है, प्लाट भी नहीं दे रहा है। तो उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो उसने पूछा भाई जी मेरे सामने ऐसे ऐसी बड़ी समस्या, वो व्यक्ति पैसे भी नहीं दे रहा, प्लाट भी नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। तो हमने उसे बताया कि आप एक प्रयोग करिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, इन दोनों स्वमानों का अभ्यास करते रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो, और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए, इनका ये संकल्प जरूर करना तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। तो बोल ठीक है। उसने ऐसे योग करना शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं, ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले, वो मेरे पैसे वो वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो योग करता गया करता गया। हमने बताया 21 दिन, 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 20 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो जो कार्य मुख्य बोल से नहीं हो पाया वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस ने, बाबा के योग ने कराया। इसलिए आप में से विकनों के सामने कोई समस्या हो तो प्रयोग करके देख सकते हैं। अगली पॉइंट, योग के प्रयोग करने के लिए हम अपनी मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं, जो पहले बताया हमने। चाहे कोई आपसे कैसा व्यवहार करे, दुख दे, तंग करे, डिसरिगार्ड करे, लेकिन कभी भी अपने मन की भावनाओं को परिवर्तन नहीं करना। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जब किसी ने कुछ आपको गलत व्यवहार किया, उल्टा सीधा बोल दिया है, झूठा आरोप लगा दिया, गुस्सा किया, तो क्या होता है, ज्यादातर लोगों की भावना ऐसे गलत व्यवहार को देखकर बदल जाती है। और देखो, अगर हमारे मन की भावनाएं बदल गई तो ये नियम है, जैसी भावना हम अपने मन में दूसरों के प्रति रख के चल रहे हैं, उनके सूक्ष्म में वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक पहुंचते हैं और फिर वो आत्मा भी हमारे प्रति वैसी भावना रख के चलेगी जैसा कि हम उसके प्रति रख के चल रहे हैं। इसलिए कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमें अपने मन में कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव भावना नहीं रखनी, अशुभ भावना नहीं रखनी, सदा सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रख के चलनी है। कैसे रहेंगी, एक गलत व्यवहार करने वाली आत्मा के प्रति भी हमारे मन में शुभ भावना, उसके लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है। और भी कई बातें, लेकिन मुख्य रूप से दो बातों का होना जरूरी है, एक तो ज्ञान और दूसरा योग का बल। सदा इमर्ज रूप में रहना चाहिए, बुद्धि में तो है, ज्ञान योग है, लेकिन बल के रूप में, इमर्ज रूप में रहना चाहिए, शक्तिशाली रूप। अगर ज्ञान और योग का बल नहीं है तो वहां भावनाएं चेंज हो जाती हैं ज्यादातर लोगों की। तो जहां ज्ञान योग का बल इमर्ज रूप में है तो वहां जब जैसा भी व्यवहार, कोई समस्या, परिस्थिति आई, तुरंत आप वैसी पॉइंट का प्रयोग कर विजयी बन जाएंगे। और योग का बल, योग तो है लेकिन बल अर्थात शक्तिशाली योग हमारा हमारा नहीं है, माना 4 घंटे से ऊपर का योग नहीं है, तो वहां छोटी छोटी बातों का, परिस्थितियों का प्रभाव हमारी स्थिति पर आ जाता है और फिर उससे स्थिति हलचल में आ जाती है, संकल्प विकल्प चलते हैं। तो इसलिए ज्ञान भी बल के रूप में, कहते हैं नॉलेज इज पावर, ज्ञान में वो शक्ति है हर समस्या का समाधान करने की, और योग में भी वो पावर है, हर परिस्थिति को सहज आप पार कर सकेंगे। तो कैसे हम एक स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन, सॉरी शुभ भावना, कैसे हम अपने मन की भावनाओं को निरंतर अपने मन में एक दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना बनाकर रख सकते हैं, उसके लिए और भी कुछ एक बातें। सदैव ये समझ के चलो, सभी बाबा के बच्चे जो भी बने, ये देवी देवता बनने वाली महान आत्माएं हैं, साधारण आत्मा नहीं है, देवी देवता बनने वाली महान आत्माएं, फरिश्ता आत्माएं। आज देखो भक्त मंदिरों के, मंदिरों में जाते हैं तो देवी देवताओं की मूर्तियों के प्रति कितनी ऊंची भावना रहती है उनके, है तो उनके भावनाएं, मनोकामनाएं सहज पूर्ण हो जाती है। कभी किसी के मन में कोई देवी देवता के प्रति नेगेटिव भावना आती है? नहीं। तो इसलिए हम सबको ऊंची नजर से देखें तो भावनाएं श्रेष्ठ शुभ कल्याणकारी रहेंगी, और जहां भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी हैं तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि आप कैसे भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। आप में से बहुत माताएं ऐसी हो सकती हैं जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते, विरोध करते होंगे। कई ऐसे भाई हो सकते हैं जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती, वो रुकावट डालती हैं, या और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है। तो ऐसी आत्मा के मन की भावनाओं को आप कैसे शुभ भावना शुभकामनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, सुनिए यह प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई बाबा के ज्ञान में चलते थे, उनका बड़ा बिजनेस था, तो उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी और बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना है, इतना विरोध करती थी। लेकिन उनका बिजनेस बड़ा होने के कारण बार बार बाहर आना जाना होता था, तो बाबा के सेंटर पर भी क्लास करके आ जाते थे। लेकिन ऐसे कब तक ज्ञान में चलना, कोई दो चार दिन की तो बात नहीं है। तो वो भाई मधुवन आए बाबा से मिलने के लिए, एक रात ऊपर ही पांडवन में रुके, क्लास के बाद हमारे से मिले और उन्होंने यही प्रश्न किया, भाई साहब मेरी युगल बहुत विघ्न डालती है, ज्ञान में चलने से रोकती है, मैं क्या करूं। तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करिए, अगर आप अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो तो आज से दो बातों का पालन करके चलना बहुत जरूरी है। पहली बात, एक तो चाहे आपका वो कितना भी विरोध करे, लेकिन एक तो अपने मन में कंप्लीट उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के चलो। दूसरा, ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्यों करना है, क्या करना है, वो मैं बतला रहा हूं कि अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है, तो जिस भी आत्मा को आप शुभ भावना के वाइब्रेशन देंगे वो उस तक पहुंचते हैं और उसका मन अंतर मन शांत और खाली है, इसलिए उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेगा। इसलिए प्रयोग अमृत वेले करना, और कोई बात आपने स्वीकार कर ली तो फिर आप ऐसे करेंगे। दूसरा, प्रयोग क्या करना है, जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, उस आत्मा को अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो, और इमर्ज कर उससे इस प्रकार से शुभ भावनाओं के रूप में बातें करो, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देव कुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। ऐसे में इनका 7 दिन अमृत वेले योग में अपनी युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे शुभ भावनाओं के रूप में बातें करना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। वो यहां से गए, जाने के बाद अमृत वेले उठकर अपनी युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे इसी प्रकार से शुभ भावनाओं के रूप में बातें की, वाइब्रेशन दिए कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो, और वो बात भी उसने बता दी जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे उसने 2 दिन अमृत वेले योग में अपनी युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे बातें की शुभ भावना के रूप। 3रे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी, तो उसने सोचा योग की भट्ठी है तो योग की भट्ठी में तो जाना है, तो मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया ही शुभ भावनाओं का, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ कर देख लेता हूं, जैसा जवाब मिलेगा उससे पता चल जाएगा कि शुभ भावनाओं के प्रयोग का कुछ असर हुआ या नहीं। तो गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। तो जो रोजाना इतना विरोध करती थी, जो रोजाना इतना विरोध करती थी, वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से तैयार बैठी है, कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन। उसके मन की भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया, चेंज कर दिया। तो आप में से भी किनों के सामने कोई ऐसी समस्या परिस्थिति हो तो आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। अगली पॉइंट, योग के प्रयोगों करने के लिए हम अपने आप को व्यर्थ के विचारों से कंप्लीट मुक्त बनाएं। सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का ही स्वरूप बनकर चलें, क्योंकि व्यर्थ के विचारों में बहुत भाई बहनों का बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है और स्थिति साधारण हो जाती है। और योग के प्रयोग के लिए आवश्यकता है शक्तिशाली की स्थिति की, तो स्थिति साधारण तो वहां सफलता कैसे मिलेगी फिर। इसलिए व्यर्थ से अपने आप को कंप्लीट मुक्त बनाएं और शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चले। व्यर्थ क्यों आता है, क्यों चलता है, जब हम अपने मन को खाली फ्री छोड़ देते, मन का काम है संकल्प करना, ज्ञान योग के विचार नहीं देंगे तो जो देखेंगे जो सुनेंगे उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाएगा। तो जिनको व्यर्थ से मुक्त होना है, कोई इनको इस समान का अभ्यास, ज्ञान की पॉइंट का मनन चिंतन, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, अभ्यास करके चलना, मनन चिंतन स्टडी करके चलना, ये सब चीजें बहुत बहुत जरूरी है व्यर्थ से मुक्त होने के लिए। तो जहां व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर संकल्पों की कमाल देखने को मिलती है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। तो कोई सुना रहे थे एक भाई को एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पहली बार वो भाई इंटरव्यू देने जा रहे थे, बाबा के बच्चे थे, तो उनके मन में थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी, पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। तो उन्होंने फोन कर पूछा, भाई साहब मेरे सामने ऐसे ऐसे व्यर्थ के विचारों की हलचल आ रही है, मैं क्या करूं। तो उन्हें बताया, कहा आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है याद किया है वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तीसरा, सफेद कपड़े पहनकर बैज लगा के जाना और बताना उसका रिजल्ट क्या रहता है। उसने ऐसा ही किया, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के, मैंने जो पढ़ा याद किया वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। इसी निश्चय के साथ हो गया इंटरव्यू देने के लिए। तो जहां पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज की तरफ गया। तो बैज को देखकर वो कहते हैं, अच्छा ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। फिर कहा कि फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोला हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोला हाँ जी। तो बस उसने थोड़ा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया, कॉमेंट्री पूरी हो गई, अब फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर उसने 5 मिनट के बाद कहा, साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है। तो उनकी आंखें खुली, अच्छा आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूं। ये इंटरव्यू हो रहा है देखो, हैं इंटरव्यू में ये नहीं है कि आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन जो भी आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाए आप कितना एक्यूरेट और फास्ट उसका जवाब देते हैं उस पर इंटरव्यू की सफलता निर्भर करती है। तो उससे जो कुछ पूछा गया फटाफट वो उसका वैसा ही जवाब देता गया। तो उसने गीत गा दिया कि प्रेम से बस, वो उसने कहा कि मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूं। तो वो उसने गीत गा दिया, बोले गीत गाकर सुनाओ। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा है, तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 3-4 मिनट का ही गीत है, गीत पूरा हो गया, फिर भी उनकी आंखें ना खुली। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा, सब अभी गीत पूरा हो गया, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा अब तो गीत गाने बहुत अच्छा जानते हो? तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। तो ये क्या हुआ? समर्थ संकल्पों की कमाल, शक्तिशाली संकल्पों की कमाल। इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, लेकिन अपने मन में कभी व्यर्थ के नेगेटिव विचारों को ना लाएं, सदा ही समर्थ शक्तिशाली विचारों का ही स्वरूप बन के चलें, तो जो आप सोचेंगे फिर वही होगा। अगली पॉइंट, योग का प्रयोग करने के लिए हम सदैव भगवान को साथी बनाकर चलें। कहीं भी जाएं आएं कुछ भी करें, 2 मिनट बाबा को याद कर कहो, बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो और ये कार्य कराओ। तो देखो जहां भगवान सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो, तो वहां सब कुछ सहज सरल और संभव होता चला जाएगा। पहले जो मैंने बताया, एक तो अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, दूसरा सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तो जहां सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ निभा रहा हो तो वहां सब कुछ सहज सरल और संभव हो जाए। आपने कोई सेवा की हो और बहन जी कोई आपको सेवा ऐसी दे दे जो आपने कभी की नहीं हो, तो जो की है सेवा वो तो करना इजी है, लेकिन जो कभी की नहीं हो तो उसके बारे में तो सोचेंगे ना, भाई मैं सेवा कैसे करूंगी या करूंगा। लेकिन बहन जी ने कहा है माता जी आपको ये सेवा करनी है तो क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे? अगर आपने बाबा की सेवा समझकर हां कर लिया, करना आपको नहीं आता है फिर भी आपने बाबा की सेवा समझकर हां कर लिया, तो फाइनल बात है कि बाबा आपसे वो सेवा करवा लेगा। क्यों? कराने वाला तो वो है, आप हमको तो सिर्फ निमिति बनना है। और ना कर दिया तो भगवान का कार्य तो किसी के बिना रुकने वाला नहीं है, उसका भाग्य किसी और को मिल जाएगा। इसलिए बाबा की सेवा में कभी ना नहीं करें, क्योंकि ये साधारण बहने नहीं, ये पवित्रता की देवियां, भगवान के राइट हैंड है, इनके द्वारा बाबा अपना कार्य करवा रहा है। तो सदैव ये समझ के चलो कि बाबा की वो श्रीमत हो जाती है और उसमें ही मेरा कल्याण समाया हुआ है, तो कभी ना नहीं करो। तो जहां सदैव हां जी का पाठ पक्का करके चलते हैं तो वहां कैसे एक असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, इस प्रैक्टिकल का अनुभव। हम नए नए मधुबन निवासी बने थे, जैसा कि बताया बहन जी ने 40 साल हो गए मुझे यहां रहते हुए, तो एक साल ही हुआ था। तो उस समय तो शांतिवन ज्ञान सरोवर कुछ नहीं था, जो था मधुबनी था, सभी दादियां यहां रहती थी, बाबा भी यहीं आते थे ओम शांतिवन में। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया, जिन भाई बहनों को क्लास कराना भाषण करना नहीं आता है उनके अंदर वो कला आए। तो मेरे को भी कहा दादी ने आपको भाषण करना, अब हम तो नई नई आए थे, हमको तो कभी दो शब्द खड़े होकर बोलने का भी अभ्यास नहीं था किसी लोगों के आगे। अब दादी ने कहा तो हम ना भी नहीं किया, हां भी नहीं किया, चुपचाप सुन लिया। और मैं बाबा के कमरे में गया, बाबा मैंने कहा मेरे को दादी ने बोला है भाषण करना है, तो मैं कैसे भाषण करूंगा, मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम्हें कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तो बस ये पॉइंट स्मृति में आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, इसका मतलब हमने कल पहले भी भाषण किया है, सफलता पाई है, और फिर से वही करना तो कौन सी बड़ी बात है, तो थोड़ा शक्ति आ गई। और बाबा को याद कर ये भी बोल दिया बाबा यदि कुछ नहीं आए तो आप या ना आप ही भाषण कराना। हम तैयार हो गए जी। अच्छा प्रोग्राम ऐसा था कि टॉपिक किसी को बताए नहीं जाएंगे, कहा कि ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ और चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा वो प्रोग्राम था। अभी तैयारी भी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। तो एक उसका नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात आप जो हैं वो नहीं कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। तो एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है, सब दादे दादियां आगे बैठे हैं, जिनको कुछ बोलना नहीं आता ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई सब नए नए, और उनमें से एक हम भी थे। तो आप सोच सकते हैं कैसा वो सीन होगा। तो प्रोग्राम शुरू हुआ, 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, 4th नंबर हमारा आया, हम भी गए, चिटकी उठाई और खोल के देखा तो इतना वंडरफुल टॉपिक निकला, कभी सोच भी नहीं सकते थे। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले भाई इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने अलग टॉपिक है। अच्छा माइक के आगे खड़े हैं, सोचने का भी टाइम नहीं, बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया, मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ, और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए, ये भी बाबा को याद कर कह के बोल दिया। और जैसे ही ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट से स्मृति में आते कि हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें 1st नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं किसको 2 शब्द बोलना नहीं आता, इतना अच्छा भाषण कर जाए, 1st नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है। तो आप इस तरह से कभी भी बाबा की तरफ से या बहनों की तरफ से कोई सेवा मिले कभी ना नहीं करनी है, सदा हां जी का पाठ पक्का करके चलेंगे तो उसमें ही कल्याण समाया हुआ है, कदम कदम पर सफलता प्राप्त कर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और योग का प्रयोग करने के लिए। हम अपने सभी बोझ बाबा को अर्पित कर दें और हल्के हो जाएं। हम अपने सभी बोझ बाबा को अर्पित कर दें और हल्के हो जाएं। क्यों, किसी के सर पर 5-10 किलो वजन रख दो, उसको को दौड़ो तो मुश्किल होगा ना, है? और उससे वजन ले लो तो सहज हो जाएगा। ऐसे ही हम में से कईयों ने अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के हैं पुराने स्वभाव संस्कार, पाप कर्म विकर्मों के हिसाब किताब के अनेक प्रकार के बोझ अपने सिर पर उठाए हुए हैं, तो उसके कारण आत्मा बहुत भारी हो गई है, मन एकाग्र नहीं होता है, योग में कुछ अनुभव नहीं होता है। तो बाबा ने आकर हमें बताया, बच्चे तुम अपने सभी बोझ मुझे अर्पित कर दो, हल्के हो जाओ, तो हल्के होके जीवन में चलना, आगे बढ़ना, उड़ना सहज और सरल हो जाए। तो कहीं भी कोई बात, समस्या, परिस्थिति आए, क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे करें, ये सोचने के बजाय हम बाबा को याद कर बता दें, बाबा ये बात ऐसे से आप देख लेना, बस भगवान हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। और बाबा के ये शब्द आपने सुने होंगे, बच्चे कोई विघन परिस्थिति यदि तुम्हारे सामने आए, तुम दिल से बाबा को याद कर कहेंगे प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो, तो बाबा तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। है तो बाबा कहता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव कराता है। तो ऐसा ही एक प्रैक्टिकल अनुभव, एक बार हम भुवनेश्वर गए थे, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर सेवा के लिए, तो वहां 2 दिन की बैठी थी, तीसरे दिन बहन जी एक क्लास कराने के लिए दूसरे सेंटर पर लेकर जा रही थी गाड़ी में, 2 टीचर बहने थी, एक माता थी, एक गाड़ी चलाने वाला भाई और एक हम 5 लोग थे उस गाड़ी में। छोटा रास्ता था, सिंगल रोड था, जा रहे थे, रास्ते में एक गांव पड़ा, जैसे ही गांव क्रॉस करने लगे दूसरी साइड से एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति आया, गाड़ी से टकरा गया। मैंने कहा बाबा इसको बचाना नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। है तो उसको तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उसकी मोटरसाइकिल को थोड़ा नुकसान हुआ। ऐसा होते ही और तुरंत 25-30 लोग इकट्ठे हो गए, हंगामा करने लगे, हमारी गाड़ी की चाबी ले ली, ये है वो है, पैसे देकर जाओ। तो अब गलती किसी की भी हो लेकिन बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है। वो 25-30 लोग थे, हम 5 लोग ही थे, तो हमने कहा भाई ठीक, हम अपनी गलती मानते हैं, आप दुकान पे चलिए, आपके मोटरसाइकिल ठीक करा देते हैं। नहीं नहीं, हमारे को तो पैसे चाहिए और पैसे भी बहुत मांग रहे। तो ऐसे बातचीत उनको समझाते करते आधा घंटा बीत गया, फिर भी उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। तो मैंने देखा अभी टाइम ऐसे वेस्ट जा रहा है, कुछ समाधान निकल नहीं पा रहा है, तो मैं वहां से थोड़ा सा अलग होकर और मैंने बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ा और बाबा को सारी समस्या बताई। बाबा ऐसे ऐसे अब हम सेंटर पर क्लास कराने के लिए जा रहे थे, रास्ते में ऐसे ऐसे हुआ है और ये लोग यहाँ इतना हंगामा कर रहे हैं, कोई बात मान नहीं रहे, और इस समस्या का समाधान अभी क्या हो सकता है वो आप जानते हो। मैंने कहा आप आओ और इस समस्या का समाधान कराओ। ऐसे मैंने बाबा को दिल से याद कर कहा। अब बाबा तो किसी के थ्रू ही कराएगा ना, तो जो माता हमारे साथ थी उसको टचिंग मिली, उसके अंदर फोर्स आया और वो सबके आगे आके बोलने लगी कि ये मेरी गाड़ी है और मैं आप लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगी, और जिसको चलना है पुलिस थाने चलो, जो पुलिस फैसला करेगी वो होगा, और देखो इस व्यक्ति के मुंह से बदबू आ रही है, इसने शराब पी हो या शराब पी के गाड़ी चला रहा है, इसलिए हम एक पैसा भी नहीं देंगे। अब ये प्लस पॉइंट मिली क्योंकि शराब पी के गाड़ी चलाना तो कानूनी अपराध है। ये सुनकर वो ठंडे पड़े और 5 मिनट के अंदर तो हमको कहने लगे एक भाई साहब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाइए। जो आधा घंटे से जिस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, 5 मिनट के अंदर बिना कुछ लिए दिए हम वहां से चल पड़े। ये है उस ऑलमाइटी बाबा की कमाल। लास्ट में एक स्लोगन सुना के मैं पूरा करता हूं। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा स्लोगन लिखा हुआ, बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। और मेरा अनुभव यह है कि भगवान सोचने का काम भी हमारे लिए करता है। इसलिए क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे करें, ये सोचने के बजाय हम अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, बस बाबा को याद करें, बस वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो सुनिए एक ऐसा ही प्रैक्टिकल अनुभव। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्ठी थी और उन्हीं के कनेक्शन में एक एक दिन की 3 जगह भट्ठी थी। तो एक ही दिन की भट्ठी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे। 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिल रहा था, काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की थोड़ी कमी हो रही थी। 4th दिन वहां की बहन जी ने एक मॉर्निंग क्लास कराने के लिए 4th सेंटर पर भेजा। जब 4th सेंटर पर पहुंचे तो वहां की बहन जी ने जाते ही प्रोग्राम दे दिया, भाई जी एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है। अब मुझे तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था। और बहन जी ने आगे का और प्रोग्राम दे दिया, तो बहन जी की बात मैंने सुन ली, उनको कुछ नहीं बोला। और मैं बाबा को याद करके कहने लगा, बाबा अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है, और बहन जी ने प्रोग्राम दिया है कि क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है, तो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना। मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना, सेवा कराने वाले तो आप हो। ऐसे मैंने बाबा को दिल से याद कर बता दिया। बस भगवान जी के लिए तो वहां भी एक सेकंड की बात है। तो क्लास पूरा किया, नाश्ता किया, और उसके बाद बाबा ने बहन जी की बुद्धि को थोड़ा टच किया, और बहन जी आके कहती है, अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया कि अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास कराने। वाह वाह। इसका मतलब हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो सदैव याद रहे कि भगवान मुझे देख रहा है, ये स्मृति सदैव इमर्ज रूप में रख के चलेंगे तो सदैव अलर्टनेस रहेगी, तीव्रता बनी रहेगी पुरुषार्थ में। और भी जो बातें बताई, तो उन सभी बातों को हम अपने पुरुषार्थ में ऐड कर चलें, इमर्ज रूप में रख के चलें, तो आप अनेक विघ्न परिस्थितियों में योग का प्रयोग कर सहजी विजयी बनकर सदैव आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति।
अपने जीवन के योग के प्रयोग से भ्राता जी ने आप सभी को लाभान्वित किया। आप भी अपने जीवन में ऐसे योग के प्रयोग करके सफलता के शिखरों पर पहुंचे। भ्राता जी को एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।